वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 55 पृष्ठ संख्या 396 बोलिए। मत कर्म कृन् मत परमो मन भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव मत कर्म कृन् मत परमो मन भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव मत कर्म कृन् मत परमो मन भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। शब्दार्थ बोलिए। मत कर्म कृत मेरा कर्म करने में रत मत परमहा मुझको परम मानते हुए मत भक्तहा मेरी भक्ति में रत संगवर्जिता सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमस से मुक्त निर्वैर किसी से शत्रुता रहित सर्वभूतेषु समस्त जीवों में यह जो सह वह मां मुझको एति प्राप्त करता है पांडव हे पांडु के पुत्र हे अर्जुन जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमस से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है जो मेरे लिए ही कर्म करता है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। हेलो मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानेति मिरांगस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपी केश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देशन तारिणे इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे भगवान कह रहे हैं ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं मत कर्म कृत मेरे कर्म में रत है। फिर मत परमो मेरे परायण फिर मत भक्ता मेरी भक्ति में लगा हुआ फिर संग वर्जिता आसक्ति से मुक्त होकर के फिर निर्वैरः सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित यह जो होता है सह माम एति वो मुझे प्राप्त करता है पांडव हे पांडु पुत्र। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे हैं। श्री प्रभुपाद की इसमें 5 सूत्र हैं भगवान की प्राप्ति के। पहला क्या है मत कर्म। तो हम देखेंगे प्रभुपाद जी एक एक समझाते हैं मेरे कर्म में लगा हुआ। फिर दूसरा सूत्र क्या है मत कर्म मेरे परायण। तीसरा सूत्र है मत भक्ता मेरा भक्त। चौथा है संगवर्जिता आसक्ति से रहे। और पांचवा है निर्वैरः सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित है ना। तो 5 चीजें हैं। तो तात्पर्य प्रफट लिखते हैं जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। ये मंत्र है या पंचसूत्रीय कार्यक्रम 5-point फार्मूला है ना पंचसूत्रीय। अतः ये श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति सामवेद सिंधु में 2-255 कहा गया है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः।
निर्बन्धा कृष्ण सम्बन्धे युक्तम् वैराग्यम् उच्यते।
ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ये कृष्ण कर्म कहलाता है। तो देखो, सबसे पहला सूत्र जो भगवान ने बताया, इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? मत कर्म कर्म, मेरे कर्म में लगा हुआ। तो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? कृष्ण कर्म में लगा हुआ है कि नहीं? जहां मत है ना, तो इसका मतलब कृष्ण है। तीन बातें से श्लोक में मत आया है, मत 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 है कि नहीं? मत कर्म कर्ण, मेरे कर्म में लगा हुआ, यानी कृष्ण कर्म में लगा हुआ। फिर मत परमो, इसका मतलब कृष्ण परम, कृष्ण परम। फिर मत भक्ता, यानी कृष्ण भक्त। तीनों में आप मत की जगह कृष्ण लगा दो, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी मत कर्म की व्याख्या करते हैं, कृष्ण कर्म। क्या है कृष्ण कर्म? जो भी कृष्ण से संबंधित हो, वो कर्म कृष्ण कर्म है ना? और भक्ति सामर्थ्य सिंधु से प्रभुपाद ने इसको उद्धृत किया है। निर्बंधा कृष्ण संबंधे, कृष्ण से संबंधित जो भी कर्म होता है विषय में आसक्त हुए बिना तब जब किया जाता है तो कृष्ण कर्म कहलाता है। इसके विपरीत भक्ति रसामृत में कहा है फल्गु वैराग्य। क्या है? प्रापंचिकतया बुद्धिया, हरि संबंधी वस्तु ना। भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु हो या भगवान से संबंधित कोई भी कर्म हो, अगर कोई व्यक्ति प्रपंच समझ करके कि बंधन है और क्या है उसको क्या बोलते हैं, सिरदर्दी, झंझट समझ करके अगर त्याग देता है तो फल्गु वैराग्य है। ये बेकार का वैराग्य है ना, फालतू का वैराग्य है ना। युक्त वैराग्य क्या है? उसको स्वीकार करना, भगवान से संबंधित जो भी कर्म है उसको करना, उसमें अपने मान बुद्धि इंद्रियां सब अच्छी प्रकार से लगाना, है ना। तो युक्त वैराग्य है। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में मस्त है, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यह है कृष्ण कर्म करने का मतलब। यह यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। अब प्रभुपाद और समझा रहे हैं कृष्ण कर्म। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्थ विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। और मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही कृष्ण भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, ये भी कृष्ण कर्म है। देखा प्रभुपाद जी कितने तरह से कृष्ण कर्म समझा रहे हैं। तो कृष्ण कर्म में प्रभुपाद जी ने कई बातें समझाई हैं। जो धनी व्यक्ति है तो कृष्ण का मंदिर बनवा सकता है, और अगर मंदिर पहले से बना हुआ है तो पूजा की व्यवस्था कर सकता है ना। तो बहुत से धनियों ने जो है पूजा की व्यवस्था के लिए जो है कुछ जमीन दी, किसी मंदिर को जमीन दी है या खेत दिए हैं, या पूजा की व्यवस्था के लिए नियमित रूप से बैंक में जो है उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो जिससे कि वो ब्याज मिलता रहता है और उस तरह से मंदिर की पूजा में कोई बाधा नहीं पड़ती है, है ना। तो इस तरह से करते हैं लोग, FD फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, 10,000 का या जो है 50,000 का FD करा दिया तो ब्याज के रूप में वो मिलता रहता है पैसा, उसके मंदिर जो है ना उनका काम चलता रहता है, खर्चा चलता रहता है। और जो ये भी नहीं कर सकता है तो कृष्ण मंदिर की सफाई में लग जाए, ये भी कृष्ण कर्म है। फिर और कृष्ण कर्म क्या है, वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह इसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम दोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। ये पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है, ये कृतिमय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कई विधि से समझाया कि कौन व्यक्ति जो है ना किस स्थिति में कृष्ण कर्म में लग सके, कृष्ण कर्म कर सकता है। और भी कई प्रकार से कोई व्यक्ति कृष्ण कर्म कर सकता है, जो संगीतकार है तो अपने संगीत को भी कृष्ण की सेवा में लगा सकता है, जो कलाकार है चित्रकार है तो कृष्ण की सेवा में वो चित्र बना सकता है, कृष्ण की लीला के चित्र बना सकता है, है ना। इस तरह के कई कार्य हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा सूत्र भगवान ने क्या बताया, मत परमो, है ना। तो मत परमा, आप प्रभुपाद लिख दे, मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। मत परम, कृष्ण परम का मतलब क्या हुआ कि जीवन का लक्ष्य ही समझता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना है, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों लेकिन मुझे ये प्राप्त करना है, दृढ़ निश्चय हो कृष्ण की प्राप्ति के लिए। आगे, ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता, उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती, उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं, उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। तो मत परम का मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण के परम धाम में जो जाना चाहता है, कृष्ण के परम धाम की जो सूचना है वो प्राप्त होती है वैदिक साहित्य में, ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से कृष्ण के परम धाम की सूचना प्राप्त होती है। और जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनसे वो कृष्ण के परम धाम की सूचना प्राप्त करता है, वहां के जीवन का अध्ययन करता है और जाना चाहता है। जैसे कई लोगों का लक्ष्य क्या होता है, अमेरिका जाना, लेकिन अमेरिका में जीवन की बहुत सुख सुविधाएं हैं तो अमेरिका जाना चाहता है, है ना। तो जितना लोगों के अंदर आकर्षण है अमेरिका जाने के लिए, तो उसी प्रकार से जो है ना उस व्यक्ति का आकर्षण होता है कृष्ण के धाम में जाने के लिए। बृहद भागवतामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत व्यवहारिक वर्णन हुआ है कृष्ण के धाम का, कृष्ण का जो है बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ है, तो वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, माता यशोदा क्या करती हैं, और कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण की गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण के गऊ में क्या करती हैं, दैनिक जो है ना कार्यक्रम दिन भर का जो है ना किस प्रकार का वहाँ कार्य होता है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब बातें बताई जाती हैं उसमें। तो बहुत मतलब व्यवहारिक वर्णन है कि मतलब फिर इस संदेह नहीं रहता है कि वहाँ कैसे रहते होंगे और पता नहीं सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अनजाने स्थान में नहीं जाना चाहता है ना, वो सोचता है कि हो सकता है फिर कुछ ऐसी असुविधाएं मिले जिनका मुझे अभी पता नहीं है, है ना। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं तो उनसे इतना मतलब ज्ञान होता है, इतनी सूचना प्राप्त होती है कि व्यक्ति की वहां जाने की इच्छा हो। तो ये जो है ना ऐसे साहित्य हैं। और जो वृंदावन के छह गोस्वामी हों उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है। जीव गोस्वामी का भी जो ग्रंथ है, गोपाल चंपू है, और भी कई ग्रंथ हैं। तो कृष्ण की लीलाओं का जो ना इतना विस्तार से वर्णन है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो ना पढ़ता है तो कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहेगा कि मैं भी कृष्ण की लीला में शामिल हो जाऊं, चाहे मुझे कुछ कोई भी रूप प्राप्त हो जाए, चाहे मैं कुत्ता बन जाऊं कृष्ण की लीला में, है ना। तो वो जाना चाहता है, कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहता है। तो मत परम का मतलब यही है कि वो जो है लक्ष्य बनाता है कि ये आगे प्रबलते हैं, उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः मैं अन्य किसी लोक को नहीं चाहता, जैसा कि मत भक्ता शब्द से सूचित होता है। हाँ, अब मत परमों के बाद मत भक्ता, इसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मत भक्ता शब्द से सूचित होता है वह भक्ति में पूर्ण दया रत रहता है। अब भक्ति क्या है प्रबलते हैं, विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन नौ साधनों में लगा रहता है। मनुष्य है तो इन नवों साधनों में रत रह सकता है, अथवा आठ में सात में नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। तो सिद्धांत क्या है, प्रभात कहते हैं कि नौ प्रकार की विधियां हैं जो भक्ति की। तो नौ की नौ में लगे रहा कोई, लगे रहे या आठ में लगा रहे या सात में लगा रहे, ये सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यह है कि 24 घंटे लगे रहे, चाहे एक में लगा रहे चाहे नौ के नौ में लगा रहे, लेकिन 24 घंटे लगा रहे भक्तियों की विधियों में, ये सिद्धांत है। तो कोई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने नौ के नौ प्रकार की भक्ति की, जैसे अम्बरीश महाराज, है ना। और कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने एक ही प्रकार की भक्ति की, है ना। परीक्षित हैं, कौन सी भक्ति, श्रवण भक्ति, केवल श्रवण भक्ति में ही लगे रहे, लेकिन लगे रहे दिन रात, है कि नहीं। और कीर्तन भक्ति में कौन है, सुखदेव गोस्वामी, खाली कीर्तन में 24 घंटे लगे रहे, है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत लगातार सुनाते हैं 24 घंटे दिन रात, है कि नहीं। जैसे परीक्षित ने श्रवण किया दिन रात 24 घंटे, तो सुखदेव गोस्वामी 24 घंटे 7 दिन तक लगातार, है ना, श्रीमद भागवत सुनाया, तो वो कीर्तन, है कि नहीं। और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण भक्ति, प्रहलाद महाराज दिन रात स्मरण भक्ति में लगे रहे, है ना, कि श्रवण कीर्तन का मौका ही नहीं मिल रहा था। असुरों के समाज में किसको सुनाए तो कीर्तन कैसे करें, कोई सुनने वाला नहीं तो फिर कीर्तन कैसे करें, और कीर्तन करने वाला कोई नहीं तो श्रवण कैसे करें। तो फिर क्या करते थे, स्मरण करते थे भगवान का दिन रात, स्मरणम। फिर पाद सेवनम में कौन है, लक्ष्मी जी दिन रात चरणों की सेवा करते हैं, पाद सेवनम। पाद सेवन अर्चनम, प्रथु महाराज दिन रात अर्चना करते हैं भगवान की, अर्चन वंदनम, अक्रोर जी दिन रात वंदना करते हैं कृष्ण की, दास्यम हनुमान जी दिन रात राम की सेवा में लगे, सख्यम सखा भाव अर्जुन का है दिन रात कृष्ण का सखा रूप में चिंतन करते हैं, आत्मनिवेदनम बलि महाराज आत्मसमर्पण किया। तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति किसी एक भक्ति में ही अगर दिन रात लगा रहे, या वो दो प्रकार की भक्तियों में, तीन प्रकार की भक्तियों में, नौ की नौ प्रकार की भक्तियों में लगा रहे, है ना, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, कृतार्थ हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सूत्र मत भक्ता। इसके बाद क्या है, संग वर्जिता। हाँ, इसको प्रभुपाद लिखते हैं संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। ना केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अभी तो वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो नास्तिक हैं उनका संग तो नहीं करना। नास्तिक तो क्या है, जो खुले विरोध करते हैं भगवान का, तो नास्तिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान का विरोध तो नहीं करते खोल करके, लेकिन वो कैसे हैं, सकाम कर्मी हैं या मनोधर्मी हैं। सकाम कर्मी वे स्वर्ग पाना चाहते हैं इंद्रिय भोगों के लिए, और जो मनोधर्मी हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो इनका भी संग नहीं करना चाहिए। संग वर्जिता का मतलब ये है ना, एक दूसरे कहा जाए विकर्मियों का तो संग नहीं करना चाहिए। नास्तिक मतलब विकर्मी है, और जो सकाम कर्मी मतलब कर्मी, विकर्मी और फिर कर्मी, है ना, हाँ, और फिर उसके आगे क्या है, मनोधर्मी। मनोधर्मी तो उसको आप समझ सकते हैं ज्ञानी, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। भुक्ति कामी और मुक्ति कामी, है ना, भुक्ति कामी मुक्ति कामी, इनका भी संग नहीं करना चाहिए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः भक्ति सामने सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अच्छा देखिए, संग वर्जिता की व्याख्या में प्रभुपाद भक्ति सामने सिंधु के श्लोक बता रहे हैं क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम हरिभक्ति विलास 11.676। संग वर्जिता का यही मतलब है, प्रतिकूल का त्याग करना है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी, अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। तो संग वर्जिता की व्याख्या रूपा जी बड़ी गहरी बताते हैं। संग वर्जिता में यहां तक कि भगवान के धाम में जाने तक का जो है ना, उसको अग्रणी होता है, अग्रणी करता है कि नहीं मुझे आपके धाम में जाना है। संग वर्जिता है, यहां तक प्रभुपाद जी ने बता दिया कि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार है। वो नहीं कहता है कि नहीं नहीं मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी वहां, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, है ना। अगर कृष्ण जो है उसको दूर रख करके ही अगर अपना कोई काम बनाए, कृष्ण का अगर कुछ काम चल रहा है इसी से, कृष्ण की सेवा हो रही है, कृष्ण की प्रसन्नता हो रही है इसी में, तो वो कृष्ण से दूर रहे, तो कृष्ण से दूर रहने के लिए भी तैयार है। यहां तक कि वो जो है कृष्ण को प्रसन्न करने में इतना आसक्त है कि कृष्ण से दूर रहने के लिए भी वो तैयार है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संगवर्जिता। यहां प्रभुपाद जी इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं संगवर्जिता। तो यहां तक पढ़ दिया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है संगवर्जिता के बाद? निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में निर्वैर। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहां उसे निर्वैरा कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है, उससे इसका व्यक्तिगत अनुभव।